یہ 10 سال کے بعد پاکستان سے جیتیں گے ایک ٹیسٹ ٹیسٹ سیریز جو ہے. تو اس سے پہلے وہ جو ہے ویسٹ انڈیز سے بھی جیت چکے ہیں اپنی ہوم گراؤنڈ پہ. تو یہ اب انگلینڈ کے لیے بھی بڑا چیلنجنگ ہے اور پاکستان کے لیے بھی. یا تو وہ سیریز کو لیول کریں 1-1 پہ اور یا پھر جو ہے یہ جیتیں, یا پھر مطلب ہے لوز کر جائیں گے تو انگلینڈ جیت جائے گا. اوکے جناب, بس یہ تھی پھر ہماری آج کی.
بہت بہت شکریہ شازیہ جی. اینڈ میں آپ کو ریپٹرز کا بھی کچھ بتا چاہتا ہوں.
ہاں جی ہاں جی ضرور سر.
ریپٹرز جو ہے ویل نیٹس آر کمنگ کلوز 92-82 دے آر کمنگ کلوز دے آر کمنگ کلوز. فورتھ کوارٹر ہونا شروع ہو گیا ہے اب. اینڈ ٹورانٹو ریپٹرز آر اسٹل لیڈنگ بائی 10 points بٹ آئی نیور ایکسپیکٹڈ
دیٹ کلوز. یا
دیٹ کلوز نیٹس آر کمنگ دس کلوز بٹ ہے اسٹل دا ہول کوارٹر از لیفٹ. کیپ یور فنگرز کراس گائز. Keep your fingers crossed. Let's see what happens.
And Andrea Horvath ne lekin kaha hai ki fingers crossed rakhne se kuch nahi hota. Kaam bhi karna padta hai.
Oh, unhone kaha hai na, to hamare liye to
kaam bhi karna padta hai. Raptors ko kaam bhi karna padega.
Raptors ke liye fingers crossed hi kaafi hai. Not to worry about.
ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے.
سپانسرز کے پیغامات ول بی رائٹ بیک. 416-620-1778 ہمارا فون نمبر.
آپ CIBC گلوبل منی ٹرانسفر کے ساتھ بہت ہی آسانی سے اپنے گھر سے ودیش پیسے بھیج سکتے ہیں, وہ بھی $0 ٹرانسفر فی پر. آپ پیسے آن لائن یا CIBC کے موبائل ایپ سے بھیج سکتے ہیں. آج ہی اپنا پہلا ٹرانسفر کریں اور پائیں $50. ادھک جانکاری کے لیے CIBC.com/transfer پر جائیں.
ڈائیورس یا کسٹڈی دی لڑائی زندگی دی سب تو اوکھی لڑائی ہوندی ہے, کیونکہ تسی اس شخص نال لڑ رہے ہوندے ہو جس نال تہاڈا گھر پریوار تے تہاڈے بچے سانجے نے. اس وقت کئی سوال اٹھدے نے کہ پراپرٹی کس کول جائے گی, کسٹڈی کس نو ملے گی, تے زندگی دی سب تو پیاری دولت بچے کس کول رہن گے.
ایس این ایس لوئرز کو انہ سارے سوالاں دے جواب تے تہاڈے حق لئی لڑن واسطے لیاقت ہے. اپنے حق جانن لئی یا سلان لین لئی اج ہی ایس این ایس لوئرز نو کال کرو 416-655-2000.
ਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ, ਫਰਨੀਚਰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ.
ਹਾਂ ਸੋਡੀ ਫਰਨੀਚਰ ਹੀ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਵਾਲੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ.
ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਣਾ. ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਟਾਫ ਪੂਰੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਨੀਚੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇਵੇਗਾ.
ਸੋਡੀ ਫਰਨੀਚਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਫਰਨੀਚਰ ਸਟੋਰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਫਰਨੀਚਰ ਕੈਨੇਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੈਲ ਕਰੇਗਾ. ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਵਧੀਆ ਡੀਲਸ ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 142 Kennedy Road South Brampton Day. Call 905-874-7171.
جیسے مزید کاروبار اور خدمات دوبارہ کھل رہی ہیں, ہم سب کو ایک دوسرے کو محفوظ رکھنے کی کوشش جاری رکھنی چاہیے. جسمانی فاصلہ رکھنے کا عمل جاری رکھیں اور 2 میٹر کا فاصلہ رکھیں. جہاں جسمانی فاصلہ رکھنا دشوار ہو اور لازمی ہو وہاں فیس ماسک پہنیں. کثرت سے ہاتھوں کو دھونا جاری رکھیں. اگر آپ کو فکر ہو کہ آپ کو COVID-19 ہو سکتا ہے یا آپ کا سامنا وائرس سے ہوا ہے تو آپ معائنہ کروائیں. گھر کے اندر یا باہر محفوظ رہیں, زندگیاں بچائیں. مزید معلومات کے لیے ontario.ca/coronavirus ملاحظہ کریں. حکومت اونٹیریو کی جانب سے ادائیگی کردہ.
Mesmerize Optical, sunglasses, eyeglasses and contact lenses.
Doctor on site, get your eyesight checked. Mesmerize Optical.
Markham and Shepherd, 1789 Markham Road, 416-335-0786.
کہیں مورگیج نہیں مل رہی, جھٹ پٹ مورگیج دلا کے ساری مشکل کر دیں گے آسان. 11 سال سے زیادہ تجربہ اور ایک بھروسہ مند نام. ہر قسم کی ریزیڈینشیل یا کمرشل مورگیج کے لیے مورگیج الائنس کی جیسمین پرمار سے رابطہ کریں. ری فائنینسنگ آپشنز, رینیول آپشنز, مورگیج ڈیفیکلٹیز, ڈاؤن پیمنٹ ایشوز, سیلف امپلائڈ, پرائیویٹ فنڈز, سیکنڈ مورگیج کے لیے کانٹیکٹ کریں موسٹ ٹرسٹ وردی جیسمین پرمار سے. نمبر ٹو کال 647-923-5659. لائسنس نمبر 10530.
السلام علیکم, میں شبہات علی فرام میگا منی ایکسچینج. ہم تقریباً 18 سال سے منی ٹرانسفر کا کام کر رہے ہیں. اگر آپ کو پاکستان پیسے بھیجنے ہیں یا منگوانے ہیں تو ہم سے رابطہ قائم کریں. ہمارا فون نمبر ہے 905-279-4754 اور ہمارا ایڈریس ہے 4196 کوتھرا روڈ مسیساگا.
इंश्योर प्रो फाइनेंशियल सर्विस से फजल वतू, जिनका है 27 साल से लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस। आजकल के दौर में तो कुछ भी फ्री नहीं मिलता, इवन मशवरा भी। सवाल छोटा हो या बड़ा, आप कॉल कर लीजिए, मशवरे की कोई फीस नहीं। चाहे लेनी हो लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल, डिसेबिलिटी, ट्रेवल और अदर इंश्योरेंस, टैक्स प्लानिंग और रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए देर ना करें कि इससे पहले देर हो जाए। फजल वदूद को कॉल कर लीजिए 6472864285, 6472864285।
हेयर मैक्स लेकर आए हैं अल्टीमेट हियरिंग सॉल्यूशन विद वर्ल्ड स्मॉलेस्ट एडवांस एंड डिजिटल हियरिंग एड्स, वो भी सबसे कम कीमत में। किसी भी हियरिंग एड की खरीदारी पर बिना किसी फिकर के 3 साल की वारंटी भी हासिल कीजिए। फ्री नो ऑब्लिगेशन हियरिंग टेस्ट के लिए आज ही कॉल कीजिए हेयर मैक्स। सर्व करते हैं GTA में 2 लोकेशन से,
जेन एग्लिंटन या फिर दंदास एरंडेल के इंटरसेक्शन पर। 4167928792 हेयर मैक्स 4167928792।
डॉक्टर मुजीब काजी आपके फैमिली डेंटिस्ट, दांत निकलवाने हैं, लगवाने हैं, क्राउन्स हैं, ब्रिजेस हैं, इवन अगर इम्प्लांट्स या ब्रेसेस लगवाना चाहते हैं तो ब्रैम्पटन में हैंसन और क्वींस के इंटरसेक्शन पे, और अब सिग्मा डेंटल क्लिनिक विलियम्स पार्कवे एंड क्राइस्टलर के इंटरसेक्शन पे। बेहतरीन डेंटिस्ट तमाम इंश्योरेंस प्लान को एक्सेप्ट करते हैं। अपॉइंटमेंट बनाइएगा, साजो आवाज का हवाला देके डिस्काउंट हासिल कीजिएगा। डॉक्टर मुजीब काजी आपके फैमिली डेंटिस्ट, 9054578661।
कर्जे से निजात के लिए एक ही नाम, मोहम्मद सिद्दीक, ऑल द सॉल्यूशन, पुरसकून जिंदगी और क्रेडिटर्स की कॉल से छुटकारा।
मोहम्मद सिद्दीक ऑल डेट सॉल्यूशन, बैंक्रप्सी, इंसॉल्वेंसी, कंसोलिडेशन करते हैं अप टू 80%। मोहम्मद सिद्दीक आपके लिए काम करते हैं, पुरसकून जिंदगी, अच्छी सेहत और लंबी उम्र की जामिन। अपनी जिंदगी को पुरसकून करने के लिए, कर्जों से पाक करने के लिए राबिता कीजिए मोहम्मद सिद्दीक 4166710577।
क्या आप या आपकी फैमिली डेथ, डिसेबिलिटी या क्रिटिकल इलनेस जैसी नागहानी सूरत हाल के लिए तैयार है? अगर नहीं तो सन लाइफ के प्रदीप जी का नाम याद रखिएगा, 4168945872।
जी हाँ, सलाह मशवरे और किसी भी पॉलिसी के रिव्यू में मैं प्रदीप सिंह आपकी पूरी मदद करूँ।
ट्रस्ट वर्दी ऑनेस्ट चार्टर्ड लाइफ अंडरराइटर एंड कैनेडियन हेल्थ स्पेशलिस्ट मिस्टर प्रदीप फ्रॉम सन लाइफ, 4168945872।
और हर मंडे को मेरे टॉक शो में जरूर शामिल।
ओह माय गॉड, लाल बत्तियां वाला सारे तो ताड़ी गड्डी मगर घूम गया, हुण की करोगे?
डोंट वरी, हुण का मौणगे वालिया ट्रैफिक लीगल सर्विसेज दे मिस्टर आरएस वालिया। केयरलेस ड्राइविंग, सीट बेल्ट, ड्रंक ड्राइव या फिर रेड लाइट, ट्रैफिक दी किसी भी उल्लंघना विच फस गए हो तो मिस्टर आरएस वालिया
सारे सदरन ओंटारियो विच सेवावां लई 86 कैनेडी रोड साउथ ब्रैम्पटन विच 9054542112
9054541212 आरएस वालिया।
कश्मीर कढ़ाई पॉइंट, बेहतरीन लजीज जायकेदार कढ़ाई या फिर करी डिशेस हैं, थाली या बारबेक्यू आइटम्स हैं, कढ़ाइयां बहुत मजे की हैं, वेजिटेबल्स और बिरयानीज के लिए। They are just taking orders over the phone. Skip the dishes, Uber Eats या फिर DoorDash। Brampton में कश्मीर कढ़ाई पॉइंट, पाकिस्तानी एंड इंडियन कुजीन, 225 कैसल ओक क्रॉसिंग इन ब्रैम्पटन, 9057585099।
टेलीटाइम इलेक्ट्रॉनिक्स, LEDs और होम अप्लायंसेस की हॉटेस्ट और ब्रांडेड रेंज के साथ 0% फाइनेंस गारंटी और लोएस्ट प्राइसेस और फ्री डिलीवरी इन GTA। तो इंतजार कैसा, अभी विजिट करें टेलीटाइम ब्रैम्पटन, 280 रदरफोर्ड रोड या स्प्रिंगडेल स्क्वायर शॉपिंग सेंटर या इटोबिको, 1770 एल्बियन रोड या 9909 मार्कम रोड। मजीद तफसीलात के लिए कॉल करें 9054551666। टेली टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स।
एशियन फूड सेंटर 9057931338। आपके किचन की तमाम जरूरियात एक ही छत तले। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ग्रोसरीज एंड स्टेबल्स, ब्रेड, डेयरी एंड एग, बेवरेज एंड कन्फेक्शनरी, ब्रांडेड फूड्स, पर्सनल केयर एंड हाउसहोल्ड, स्वीट्स एंड समोसास। Order now for in-store free pickup, 9057931338. Home delivery is also available. Asian Food Center, 9057931338. Asian Food Center.
سونا یعنی گولڈ خریدنا یا بیچنا ہے تو ایک قابل اعتماد نام روبی جولرز یاد رکھیے گا. اسلم یا اکرام بھائی سے ملاقات کیجیے گا. ہاتھ کے بنے ہوئے یا مشینی زیورات, اتنی ویرائٹی ہے چوڑیوں اور کروں میں, چینز میں. آپ سونے کی خریداری کے لیے ایک با اعتماد نام روبی جولرز وزٹ ضرور کیجیے گا. پروگرام کا ریفرنس دیں گے تو ڈسکاؤنٹ بھی ہے اور سونے کی ریپیئر کوئی چارج نہیں. روبی جولرز 7086 ایئرپورٹ روڈ مالٹن میں, روبی جولرز.
جی صاحب, ایک دفعہ سے خوشی آمدید کہنا چاہتی ہوں میں آپ کے ساتھ عارفہ مظفر. آج ایک سیگمنٹ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے.
اس سے پہلے کہ آپ سیگمنٹ کی طرف جائیں, 102 ٹورانٹو 90 بروکلن اینڈ دا فورتھ کوارٹر از گوئنگ آن 941 ریمیننگ.
چلو جی, آج تو جیت جائے گا ریپٹر انشاءاللہ.
وہ نو بہت قریب آ گئے, وہ 9 پوائنٹ کا 10 پوائنٹ کا فرق آ رہا ہے, 9-10 پوائنٹ 11 پوائنٹ کا فرق.
یا ایک ایک سیکنڈ میں تو گول ہو جاتا ہے.
گول نہیں ہوتا, اسے باسکٹ ہوتی ہے.
ہاں وہ ہو جاتا ہے,
کیا
ہو جاتا ہے, باسکٹ ہو جاتی ہے. ایگزیکٹلی. فور سی براس چکن کا میں ذکر کرنا چاہتی ہوں, کافی اینڈ کولڈ کارنر. فور سی براس چکن, آپ نے جانا ضرور ہے اسکاربرو میں, دونوں لوکیشن انہوں نے اسکاربرو میں شروع کی ہیں. او کارنر لوکیشن اسکاربرو میں ہے, جو کہ 1093 او کارنر ڈرائیو پہ ہے. ان کی سیکنڈ برانچ جو نئی برانچ ہے, دیٹ از لارنس لوکیشن, 3879 لارنس ایونیو ایسٹ اسکاربرو میں, ایسٹ آف اسکاربرو گولف کلب روڈ پہ. یہاں پہ آپ کو کافی اینڈ ڈرنک ہیں, آئس کریمس ہیں, لیمونیڈس ہیں. آئس کریمس میں بڑی ورائٹی ہے. بیکری آئٹمس آپ لیجیے گا. فور سی کا بریک فاسٹ ضرور ٹرائی کریں. فیملی ڈیلز میں چکن کامبوز ہیں, فور پیٹرنز ڈیلز بھی ہیں جس میں لیگ تھائز کی ہیں, بریسٹ کی الگ ہے, ہول چکن کی, یعنی چکن سینڈوچ چکن پخ. کبھی آپ نے کیا ہی والا چکن پخ. فور سی چکن ریپس بھی آپ کو مل سکتے ہیں. فور سی چکن براسٹ 416,
آپ شروع کریں
چکن پخ 416-438-4488
434-4488 ان کا نمبر ہے. کوکب جاوید کی بات کرچے, کوکب جاوید مارٹگیج ایجنٹ ہیں صاحب, پرائیویٹ مارٹگیج کے ساتھ کمرشل مارٹگیج, انڈسٹریل مارٹگیج, فارم اینڈ ہابی فارم, ویری کمپیٹیبل ریٹس لے کے دیں گے آپ کو. نیو کمرس ٹو کینیڈا, فرسٹ ٹائم بائرس, کمرشل مارٹگیجز اینڈ لونز, فرسٹ سیکنڈ اینڈ تھرڈ مارٹگیجز, ری فائنینسنگ, سیلف امپلائڈ, ڈیٹ کنسالیڈیشن. ایک ہی نام, کوکب جاوید مارٹگیج ایجنٹ. 416-454-6065 ان کا فون نمبر.
چلیے صاحب, میں دو اور پیغام دوں گی. ایک تو سبزی منڈی کا دوں گی, کیلیڈن سبزی فارم جو کہ کہاں پہ ہے, ایئرپورٹ اینڈ مے فیلڈ کے نارتھ ویسٹ کارنر میں کیلیڈن. وہ کہتے ہیں کہ آئیے. کل میری ایک بہت پیاری باجی ہیں کہیں, کہتی ہیں اتنی مرچیں ہیں ان کے پاس, یعنی تازہ مرچوں کا اچار ڈالیں. اچار بنانے کا دل چاہتا ہے آپ کا, میں آپ کو سکھا سکتی ہوں اچار کیسے ڈالنا ہے. کچھ بھی نہیں, جا کے مرچیں لے آئیں وہاں سے, ہلکا سا نمک لگا کے نا, تو کھلے برتن کے بیچ میں باہر رکھ دیں. مین وائل جو کابلی چنے ہوتے ہیں نا, کابلی چنوں کو بھی بھگو دیں, سے دو کپ کابلی چنوں کو بھگو دیں. ان کابلی چنوں کو پانی میں بھگو دیجئے گا. اس کے بعد ایک دن کے لیے کابلی چنے بھگوئے رکھیں, مرچوں کو درمیان میں سے کٹ لگا لیجئے گا, ٹھیک ہے, اور نمک لگا کے رکھ دیں. یہ مرچیں اپنا پانی چھوڑ دیں گی. پھر آپ سونف, تھوڑی سی اجوائن, تھوڑی سی میتھرے, نہیں ہوتے جو میتھی کے بیج ہوتے ہیں یلو کلر کے, اس کے علاوہ کلونجی, یہ تمام چیز, سونف, کلونجی اور میتھی کے بیج, یہ آپ لے لیجئے گا. اور مرچیں, وہ جو چنے آپ نے بھگوئے ہوئے ہیں, وہ اب وہ چنے باقی کے جو پکیں گے نا, کچے چنے تھے جس کو صرف آپ نے پانی میں بھگو کے رکھا ہوا تھا, وہ ان مرچوں کے بھی, بھائی اتنا مزے کا اچار بنتا ہے میں کیا بتاؤں. مگر اگلی بات بھی سن لیجئے گا, مرچیں جو کابلی چنے آپ نے بھگوئے ہوئے تھے, پانی خشک کر کے کابلی چنے اس میں ڈال دیجئے گا, سونف ڈال دیجئے گا, میتھی کے بیج ڈال دیں, کلونجی ڈال دیں. ایک چیز اور, یہ اچار زیادہ عرصہ تک رہ نہیں سکتا, इसका एक और तरीका कार भी है, इसका एक और तरीका कार ये है कि आप सरसों के तेल की बॉटल ग्रोसरी स्टोर से लेने, ये हमारे तमाम ग्रोसरी स्टोर पे अतिया सुपरमार्केट पे मिल जाएगा, बटाला पे भी मिल जाएगा, एशियन फूड पे भी मिल जाएगा, फातिमा ग्रोसर्स पे मिल जाएगा, सरसों के तेल की बॉटल। उस तेल को कड़कड़ाइए, जब वो कड़कड़ाने लगे ना तो सौंफ, कलौंजी और मेथी के बीज, इनको मेथी के बीज थोड़े सख्त होते हैं, ग्राइंडर में डाल के दो दफ़ा ब्लेंड कर लें, ठीक है, यानी वो तोड़े मत, यानी पीसे मत, उन्हें पाउडर मत बनाएं, मगर उनको दड़बड़ कर लें। और जो आपने वो जो तेल को आपने भूना गरम किया है ना, उस गरम तेल के अंदर ये डाल के बस एक दफ़ा चम्मच चला के आग को बंद कर दीजिएगा, यानी वो भुन गया। और ये जो मिर्चें और ये जो आपके काबली चने जो भिगोए हुए थे और मिर्चों को एक दिन पहले आपने टक लगाया हुआ था, इनको मिक्स करें, तेल को ठंडा होने दें, मसाला जो बीच में आपने डाला हुआ तड़क के उसको ठंडा होने दें। बाय द वे, इसके बीच में अगर आप सरसों के बीज भी डाल देते हैं ना तो वो भी इसको अच्छा टेस्ट देगा। जब वो तेल ठंडा हो जाए तो मसाले समेत इसके बीच में डाल दें। कोशिश यही करें कि जिस बर्तन में भी डालें ये तेल ऊपर की सतह तक आएगा, फिर ये ख़राब नहीं होगा। वैसे नॉर्मली जब इसको, इस अचार को लोग, इट्स वेरी डिलीशियस अचार, बाज़ार से भी तो आप लेके आते हैं ना,
मगर ये इन दोनों में अगर आपने मिर्चें तो कई किस्म की होती हैं, आप ये तो बता देना कि कौन सी वाली मिर्चें चाहिए इसमें।
अचार हमेशा तीखी मिर्च का ही बनता है, अब कश्मीरी मिर्च का अचार बनने से तो रहा, मैंने कश्मीरी मिर्च का अचार,
नहीं नहीं वो बड़ी मिर्चें होती है जो ज्यादा तीखी
नहीं
होती,
वो आपके लिए कमजोर लोगों के लिए
नहीं, नहीं। अच्छा कमजोर
मिर्च का अचार हमेशा तीखी मिर्च का ही बनता होता है, अचार तीखी मिर्च का तैयार होता है, तो जरूर तैयार कीजिएगा। तो ये सब्जी मंडी पे अगर आप जाएं तो वो कहते हैं कि हरी मिर्चें, लौकी, करेले, बैंगन, बैंगन के पकौड़े बना के खाइएगा, यप्पो, मेथी, धनिया, साग, ताज़ा ताज़ा सब्जियां वहां से लेके आएंगे। और अपना फार्म है उनका, अराउंड 100 acres का ये फार्म है, कैलेडन सब्जी फार्म के नाम से जाना जाता है। जो फार्म इज अराउंड 10 minutes की ड्राइव के ऊपर नॉर्थ की तरफ है, मगर जो इनका आउटलेट स्टोर है दैट इज़ ऑन एयरपोर्ट एंड मेफील्ड। नंबर आप उनको नोट कर लीजिए, 9056533633, 653-36-33 उनका नंबर है। हमारे आज के प्रोग्राम को ताउन दिया है, एक किसी और में ताउन दिया था उसका, हाँ सिल्क। सिल्क क्या है? स्कूल ऑफ इस्लामिक लेगेसी। अब वो कहते हैं स्कूल ऑफ इस्लामिक लेगेसी, यहाँ पर किरात, नशीद, तमाम चीज़ें सिखाई जाती हैं। सर वीकेंड स्कूल, नॉर्मली $35 पर स्टूडेंट इसकी फीस है। अल्हम्दुलिल्लाह टोरंटो में ऐसे लोग भी हैं जब बहुत से बच्चे जो इस्लामिक स्कूल में जाना चाहते हैं, और किसी बच्चे की तालीम में अगर मैं और आप हिस्सा डाल लेते हैं, मैंने वैसे अभी तक नहीं डाला सेल्क में, मगर अगर आप किसी बच्चे की तालीम में हिस्सा डाल लेते हैं, इट्स अ बिग डील। यहाँ पे कुरात और नशीद, कुरान पाक किरात के साथ पढ़ना, नशीद सिखाई जाती है। वीकेंड की क्लासेस हैं, यानी छोटे बच्चों से लेके 19 साल तक, 20 साल तक के बच्चे। एंड यू नो व्हाट, इंसान अपनी कंपनी से, इर्द गिर्द से सीखता ज़रूर है। स्कूल ऑफ इस्लामिक लेगेसी कनाडा, एवरी संडे 11 बजे से लेकर 2:30 बजे तक इनकी क्लासेस होती हैं, वीकेंड पे ही सिर्फ ये स्कूल है, एडमिशन्स इनकी स्टार्टेड हैं, और अब तो डिस्टेंस लर्निंग है, आपको भी पता ही है। नंबर आप उनका नोट कर लीजिएगा, नंबर मैं आपको दिए देती हूँ, 4169533984 9533984 9533984। साहब हमें ना आजादी मिल गई है, इसलिए मुझे और आपको शायद आजादी की उतनी कदर है नहीं, क्योंकि हम में से बहुत सारी आवाजें बुलंद होती हैं। कभी हम कायदे आजम के बारे में सुन लेते हैं, कभी हम मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में सुन लेते हैं, और मुझे यकीन है कि आपके बच्चे भी बिल्कुल, हमारा स्कूल ऑफ थॉट डिफरेंट है, यूथ का स्कूल ऑफ थॉट बिल्कुल डिफरेंट है। जो यंग बच्चे हैं ना, वो हमारे रवैयों से परेशान हैं कि आप लोग क्यों इन अशखास के पीछे जाते हैं। मगर साहब पॉलिटिक्स मुझे लगता है पूरी दुनिया में ही ऐसी। अब देखिएगा अमेरिका द मोस्ट सिविलाइज्ड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, द मोस्ट सिविलाइज्ड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, आप आलम देखिएगा देयर इन्फ्लुएंस ऑन द मिडल ईस्ट, दैट मिडल ईस्ट इज बर्निंग नाउ, आग लगी हुई है मिडल ईस्ट में। आपको पता ही होगा कि यूनाइटेड अरब इमारात्स ने जब इसको एक्सेप्ट किया इसराइल को, तो बाकी ममालिक भी उसी रविश में उसके पीछे चल रहे हैं। सऊदी अरेबिया ऑलरेडी हैज डन, सऊदी अरेबिया इज क्वाइट पीछे रह के काम करवा रहा है। सिर्फ टर्की एंड ईरान, दीज आर द टू कंट्रीज जो स्टैंड लिए हुए हैं, आई बिलीव प्रोबेबली इराक, सीरिया, सीरिया भी, शाम भी उसके पीछे, क्योंकि शाम में खुद आग लगी हुई है, शाम में तो लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है। तो बेसिकली ईरान, टर्की, सीरिया जैसे माजी जमाल साहब ने कहा, और लेबनन का भी, मगर लेबनन में भी चेंज ये लोग ला चुके हैं, ठीक है, लेबनन की भी कमर टूट गई हुई है। और लेबनन की भी मैंने आपने बुराई की भी और सुनी भी, हालांकि कहते हैं लेबनन में कोई शख्स कर्ज में नहीं है, वहाँ के जवानों को तालीम जिस तरह दिलवाई जाती थी, वो तो फिर आपने जिसको डीफेम करना है आपने डीफेम कर लेना है, यू नो यू हैव वेज, यू हैव टेक्नोलॉजी, यू कैन डीफेम एनीबॉडी। अब आज पाकिस्तान के बारे में बार बार, देर इज़ अ वेबसाइट इन अमेरिका जो कि हम तमाम लोगों को न्यूज़ भिजवाती है, शेयर अमेरिका के नाम से ये वेबसाइट है, जिसमें द मोस्ट न्यूज़ आर अबाउट चाइना, कि चाइना दुनिया में, और अगर आप गूगल भी करके देखें तो बेशुमार वीडियोस आपको नज़र आएंगी कि चाइना किस तरह से इन्वेस्ट करता है और किस तरह से उन ममालिक के ऊपर कब्ज़ा कर लेता है, और पाकिस्तान को चाहिए कि वो सी पैक का हिस्सा ना बने, बिकॉज दे जस्ट वॉन्ट टू ब्लॉक। मगर एक बात याद रखिएगा कि जिस चीज को जितना दबाया जाता है ना, वो उतनी ज्यादा उभर के सामने आती है। सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को कर्जा दिया था, और वो कर्जा ऑन डिमांड कर्जा था, यानी कर्जा तो दे दिया था मगर जब चाहे सऊदी अरेबिया वो कर्जा मांग सकता है वापस, जिसकी पहली किस्त वापस कर दी गई है, एंड दे आर प्लानिंग टू गिव मोर। अब देखिए हमारे जनरल साहब वहां गए हैं, क्या फैसला तय पाता है। मगर साहब आजादी की कीमत, जाहिर है मेरे हीरोज तो हैं ना, मेरे, मैं जब अपने हीरोज की बात करती हूँ, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना है, मैंने तो इलामा इकबाल के बारे में भी पढ़ा, मेरे एक बहुत प्यारे भाई हैं, अभी उनका मुझे फोन आया था, एंड आई हैव ऑल माय रिस्पेक्ट फॉर दिस ब्रदर ऑफ माइन असलम सियाल साहब। शायद मेरा वीक पॉइंट आपके सामने ये है कि मैं बकौल आप लोगों के कि मैं शायद इम्प्रेस हो जाती हूँ। मैं, एक बात याद रखिएगा, जो शख्स मेरे से कुरान पाक की बात करेगा मैं डेफिनेटली इम्प्रेस होंगी, इसलिए कि मैं अपने आप को बहुत कमज़ोर समझती हूँ, ना ये दुनिया में पैसा मेरे काम आना है, ना इस स्टेशन पे से किसी ने मेरे साथ जाना है, मगर अगर कोई शख्स कुरान पाक की बात करता है और कुरान की आयत के लिहाज से वो बात मुझे समझ आती है तो आई जस्ट गो विद। तो आज़ादी, माजरत की ख्वास करूँ, आज़ादी के लिहाज से जो मैं अब आज आपसे बात करने जा रही हूँ, हम आज़ाद मुमलिकत हैं मगर हम उस आज़ाद मुमलिकत की कदर नहीं करते। पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए, पाकिस्तान से अंदर अशखास को ख़रीद लिया जाता है और हम बिक भी बहुत आसानी से जाते हैं। ये मैं जो वाक्या शेयर कर रही हूँ भगत सिंह के बारे में है। मैं डेफिनेटली भगत सिंह को पहली दफ़ा इतनी डिटेल में पढ़ा और देखा, नेवर रेड अबाउट हिम, आई डेफिनेटली गो इन डिटेल अबाउट भगत सिंह एंड मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी। बहुत से लोगों को शायद इस चीज़ पे भी एतराज़ हो, मगर जो लोग इनकलाब लाने वाले होते हैं वो मौत से डरा नहीं करते होते। सिर्फ इतना कह दें कि भाई आपको पता होना चाहिए क्या मंदब शो, जो इनकलाब लाने वाले होते हैं वो मौत से डरा नहीं करते होते, वो मुतालिया करते हैं, वो दुनिया की जो रेवोल्यूशनिस्ट हैं उनका मुतालिया करते हैं, वो अपने हिस्ट्री से सीखते हैं। कहते हैं कि 23 मार्च 1931 सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले 23 मार्च 1931 सेंट्रल जेल लाहौर, कहते हैं ये भी एक आम सा दिन था, सिर्फ ये था कि शाम के वक्त एक तेज तरीन आंधी चली थी, लेकिन जेल के कैदियों को अजीब लगा। सुबह 4 बजे वार्डन जो थे ना, और चरण सिंह था वार्डन का नाम, जो जेल के वार्डन थे, आप साथ में ये वीडियो भी देखिएगा, एंड आई वॉज इम्प्रेस्ड बाय दिस वीडियो। सुबह 4 बजे वार्डन चरण सिंह ने कोठड़ियों में तमाम जितने कैदी थे, वो वार्डन आया, सुबह सुबह आए और उन्होंने कहा कि तमाम कैदी अपनी कोठड़ियों में चले जाएं। कोई वजह नहीं बताई कि उन्होंने क्यों शाम को 4 बजे यानी दोपहर को 4 बजे के करीब वार्डन आए और उन्हें कहा सारे के सारे कैदी अपनी बैरक्स में वापस चले जाएं, मगर उन्होंने वजह कोई नहीं बताई, सिर्फ इतना कहा था कि ये ऑर्डर ऊपर से आया। कहते हैं कि जेल के कैदी अभी सोच ही रहे थे कि जेल में आपको पता ही होगा नाई भी आता है जो उनके बाल वगैरह काटता है, तो जो नाई था सेंट्रल जेल लाहौर, उसका नाम था बरकत, तो बरकत जेल आया और बरकत जेल ने तमाम कोठरियों के आगे से गुजर रहा था ना, तो वो कह रहा था आज शाम को भगत सिंह को फांसी हो जाएगी। यानी ये तीन लोग थे, एक का नाम था भगत सिंह, एक का नाम था राजगुरु और एक का नाम था सुखदेव। तो ये जो बरकत सिंह नाई जब रात को आता है जेल के पास, तो वो कहने लगा कि आज रात को अब जो कोठरियों में बाकी कैदी बंद थे उनको जवाब मिल गया कि चरण सिंह जो जेल के वार्डन थे क्यों उन्होंने कमरों में जाने का कहा। तमाम के तमाम कैदियों को इस खबर ने झंझोड़ के रख दिया। वो जो बरकत नाई था ना, जाहिर है वो हर कोठरी में जाता था बाल वाल काटने के लिए, तो क्योंकि राजगुरु, सुखदेव और ये जो इन तीनों को, सुखदेव को, राजगुरु को और भगत सिंह को फांसी हो जानी थी, तो यकीन उनके बाल वाल काट के उनका हुलिया से ही दुरुस्त करना था। तो जितने कैदी थे उन तमाम कैदियों ने बरकत सिंह को दरख्वास्त की कि देखो तुम भगत सिंह के पास जा रहे हो, उनकी कोई याददाश्त यानी कोई घड़ी, कंघा या उनका कोई पेन, पढ़ने का बहुत शौक़ था, लिखने का उनको बहुत शौक़ था, तो कैदियों ने कहा कोई एक चीज़ लाकर हमें दे दो ताकि हम आने वाली नस्लों को बता सकें कि हम उसी जेल में थे जिस जेल में राजगुरु थे, जिस जेल में भगत सिंह थे, जिस जेल में सुखदेव थे, और जब उनको फांसी हुई थी हम उस जेल में मौजूद थे, और ये देखो ये सुविनियर के तौर पर ये पेन है जो राजगुरु का था। बहरहाल कहते हैं कि बरकत सिंह भगत सिंह की कोठड़ी में गया और वापस जब आया ना, तो उनका कलम और कंघा इसके पास था, बरकत सिंह के पास। अब जो जेल में कैदी थे हर कोई लेने के लिए कायल था, मगर अनफॉर्चुनेटली उनमें से किसको देता, इतने सारे कैदी थे कोठरियों के बीच में। तो कहते हैं उस वक्त फिर कुरानदाजी हुई और वो लॉटरी सिस्टम के तहत एक बंदे को कलम मिल गया, एक बंदे को कंघा मिल गया। एक्चुअली जो राजगुरु सुखदेव सिंह और भगत सिंह को जिस हिसाब से ये केस था लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, ये उसकी सजा भुगत रहे थे। कहते हैं कि जब लाहौर सेंट्रल जेल में इन तीनों को यानी राजगुरु को, भगत सिंह को और सुखदेव को जब फर्स्ट टाइम सेंट्रल जेल में लाया गया ना, तो ये उसी कॉरिडोर में से गुजर रहे थे। तो कांग्रेस के लीडर, एक और लीडर नेता भी ना इसी जेल के बीच में बंद थे, तो उन्होंने भगत सिंह से पूछा, जो कांग्रेस का एक लीडर इसी जेल में बंद था, उसने भगत सिंह के पूछा कि भाई लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में आपने अपना बचाव क्यों ना किया। भगत सिंह ने बिल्कुल सीना तान के बड़े नडर अंदाज में कहा कि इन कलाबियों को तो मरना ही होता है और यही मौत उनकी कॉज को जिंदा रखती है। बहरहाल कहते हैं कि जो वार्डन चरण सिंह थे ना, उनको भी भगत सिंह अच्छे लगते होते थे। अदालत से लाहौर में कहते हैं कि अक्सर, क्योंकि भगत सिंह को पढ़ने का बहुत शौक था, तो जो वार्डन चरण सिंह थे ना, वो अक्सर लाहौर की लाइब्रेरी से किताबें ला के भगत सिंह को दिया भी करते थे। भगत सिंह की जेल की ज़िंदगी बड़ी सख्त थी। इनकी कोठरी का नंबर या जिस बैरक में ये थे उसका नंबर 14 था और ये कच्ची ज़मीन थी, घास इसमें उगी हुई थी और कहते हैं कि कोठरी की लंबाई तकरीबन 5.5 फुट 10 इंच के करीब थी और इनका अपना कद भी बड़ा लंबा था, बमुश्किल उनका कद पूरा आता था, यानी टांग को लंबा करके बमुश्किल से वो इसमें सो सकते थे। क्योंकि भगत सिंह को पढ़ने का बहुत शौक़ था और जेल में उन्होंने, उनका एक दोस्त था स्कूल के ज़माने का जयदेव कपूर, उसने उनको लिखा कि मुझे एक लेनिन की किताब है लेफ्ट विंग कॉन्स्पिरेसी, मुझे लेनिन की किताब लेफ्ट विंग कॉन्स्पिरेसी, कॉल लमख्त की जो एक किताब थी मिलिट्रिज्म, वो ला दो, या फिर एक और किताब थी द स्पाई, ठीक है, उसकी, ये तीन किताबों की उन्होंने फरमाइश की थी. बहरहाल भगत सिंह के वकील जो थे ना, मेहता उनका नाम था, 23 मार्च को जब अचानक इनकी फांसी, तकरीबन 12 घंटे पहले इनको फांसी के ऑर्डर्स हो गए थे, तो आखिरी लम्हे के ऊपर इनके जो लॉयर थे मेहता साहब, वो इनको मिलने के लिए आए. प्राणनाथ मेहता था इनके लॉयर का, और प्राणनाथ मेहता जब इनको मिलने के लिए आए तो भगत सिंह वो किताब, उन्होंने कहा कि मेरी किताब लेके आए हो. प्राण मेहता ने कहा मैं लेके आया हूँ. तो ये लेनिन की किताब थी जो, वो इन्होंने उसको दी ना, रेवोल्यूशनरी बुक थी वो उसको दी. तो भगत सिंह ने कहते हैं कि दूसरी बात ही उससे कोई नहीं मेहता से की, और फौरी तौर पे किताब खोल के उन्होंने ये किताब पढ़ना शुरू कर दी. और मेहता को जब उन्होंने देखा तो उन्होंने नारा लगाया इनकलाब जिंदाबाद. मेहता ने उनको पता था कि मुझे उनको आज रात को, यानी आज दिन को 12 घंटे पहले फांसी हो जानी है, तो वो जल्दी जल्दी उस किताब को पढ़ना चाहते थे. तो मेहता साहब जो उनके लॉयर थे, उन्होंने भगत सिंह से कहा कि देश के नाम पे कोई पैगाम देना चाहते हैं. तो भगत सिंह ने किताब से मुंह हटाए बगैर कहा, सिर्फ दो पैगाम देना चाहूँगा, नंबर एक साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और इनकलाब जिंदाबाद. इसके बाद वो अपनी किताब से उन्होंने सर नहीं उठाया और किताब पढ़ने लगे. इस पैगाम के साथ भगत सिंह ने जो दूसरा पैगाम अपने वकील को अपनी कोठरी में दिया, उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू और सुभाष चंद को मेरा पैगाम पहुंचा दें और शुक्रिया कहिएगा कि उन्होंने मेरे केस में दिलचस्पी ली. भगत सिंह जो थे वो अपनी किताब को पढ़ने में महव थे, उन्होंने दोबारा सर नहीं उठाया. भगत सिंह के मिलने के बाद उनके लॉयर जो मेहता थे, उन राजगुरु से मिलने के लिए उनकी कोठरी पर पहुँचे. राजगुरु के अल्फाज थे कि जैसे भगत सिंह को जब मिले तो उन्होंने छूटते कहा था इनकलाब जिंदाबाद. राजगुरु की कोठरी में गए तो राजगुरु के अल्फाज थे, कोई बात नहीं, हम दोबारा जल्दी मिलेंगे. सुखदेव ने मेहता को याद दिलाया कि उनकी मौत के बाद मेरा एक कैरम बोर्ड है जो यहीं पे जेल में है, वो ले लीजिएगा और उसको मेरी फैमिली को दे दीजिएगा. अब मेहता साहब उनके वकील अपने तीनों क्लाइंट्स को मिलने के बाद चले गए, और ये खैर पता चल गया था कि अब उनको राज भगत सिंह को, राजगुरु को और इन तीनों को वक्त से, यानी मुकर्रर वक्त था नेक्स्ट डे 24th को सुबह 6 बजे फांसी देनी थी, जबकि इनको 12 घंटे पहले, एक दिन पहले 23 मार्च को 1931 को शाम को 7 बजे फांसी देने का कह दिया गया. बहरहाल अच्छा, भगत सिंह ने और कोई फरमाइश नहीं की थी, क्योंकि फांसी एक्चुअली तो 24th को मॉर्निंग में थे ना, तो वहाँ पे सफाई करने वाला एक मुसलमान था, उसने उसको कहा कि देख कल सुबह तो मुझे फांसी मिल जानी, आज रात का खाना मुझे अपने घर से लेके आना. बेबे था उस आदमी का नाम जो सफाई करने वाला था. भगत सिंह की ये ख्वाहिश पूरी ना हुई, क्योंकि फांसी जो थी वो 12 घंटे पहले दी जा रही थी. खैर भगत बेबे जो थे, यानी वो सफाई करने वाले, जेल में घुस ही नहीं सके थे. थोड़ी देर के बाद इन तीनों को, किसको, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को फांसी के लिए कोठरियों से बाहर निकाला गया. भगत सिंह ऊंची आवाज में, इन तीनों ने, भगत सिंह ने, राजगुरु ने और सुखदेव, तीनों ने अपने हाथ पकड़े हुए थे और ये आज़ादी का गीत गा रहे थे, हालांकि फांसी के लिए लेके जाए जा रहे थे. और गीत था कि कभी वो दिन भी आएगा, आज़ाद होंगे हम, अपनी जमी होगी, अपना आसमां होगा. फिर तीनों ने एक एक करके, जब इनको मौत घाट लेके जाया जा रहा था तो इन तीनों का वजन किया. मज़े की बात यह है कि जेल में रहते हुए बजाय वज़न कम होने के, हालांकि दे आर अ टफ टाइम इन द जेल, मगर इन तीनों का वज़न बढ़ गया था. इन सब से कहा गया कि नहा लिया जाए, तीनों ने नहाया. नहाने के बाद इनको काले कपड़े पहनने के लिए दिए. चरण सिंह वार्डन ने भगत, अब क्योंकि ये आज़ादी का नगमा गाते हुए तख्तादार की तरफ जा रहे थे, मगर चरण सिंह जो वार्डन थे जेल के, उन्होंने भगत सिंह के कान में आहिस्ता से कहा कि वाहिगुरु को याद करो. भगत सिंह बोले, सारी जिंदगी तो मैंने ईश्वर को याद नहीं किया, बल्कि मेरा तो ईश्वर से जिगड़ झगड़ा रहा कि गरीबों के साथ इतना जुल्म हुआ. अगर आज मैंने माफी मांगी तो ईश्वर कहेंगे भाई भगत सिंह से डरपोक कोई और है ही नहीं. बहरहाल कहते हैं कि जूं ही घंटे ने 6 बजाए, इन बाकी कैदियों ने जितने कोठड़ियों में अपने अपने बंद थे ना, दुबक के बैठे हुए थे, उन्होंने इन तीनों के पाँव की चाप सुनी। इनके साथ, इन तीनों के पाँव के साथ भारी बूटों की आवाज़ भी आई और ये तीनों इनकलाब का गीत गा रहे थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सभी को इनकलाब जिंदाबाद। अब वो कहते हैं कि ये तीन तो गा ही रहे थे तो कोठरियों में जो बाकी लोग बंद थे उन्होंने भी यही गाना शुरू कर दिया। भगत सिंह दरमियान में थे, एक साइड पे सुखदेव थे और एक साइड पे जो थे उनके तीस राजगुरु थे। इन तीनों को तख्तादार के ऊपर खड़ा किया गया, सेंटर में भगत सिंह थे। भगत सिंह ने एक्चुअली अपनी माँ से वादा किया था, वादा किया था कि माँ अगर मुझे फांसी भी हुई ना तो मैं तख्तादार के ऊपर भी जो नारा लगाऊंगा वो यही लगाऊंगा, इनकलाब जिंदाबाद। तो इनको अपनी माँ से किया हुआ वादा याद था। कहते हैं कि इसी जेल का ना, ये लाहौर सेंट्रल जेल का जो एक और बड़ा एम्प्लॉई था पिंडीदास सोंधी, उसका घर भी ना बिल्कुल जेल के साथ था। अब भगत सिंह को जब तख्तादार पे चढ़ाया, तीनों खड़े हुए थे, दरमियान में भगत सिंह थे, एक सिर पे चरण सिंह थे और एक सिंह पे सुखदेव थे। जब इनको फांसी लगी तो कहते हैं भगत सिंह ने इतनी ऊंची आवाज में इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया कि वो आवाज ना सिर्फ जेल की बैरक्स, बल्कि ये जो जेल का एक काउंसलर जिसका घर जेल के साथ मुंसलिक था उसके घर तक सुनाई दी गई। बस सबको पता चला कि अब फांसी का वक्त है और सब कैदियों ने भी ये नारे लगाए। उनके हाथ पांव को बांध दिया गया, गले में फांसी की रस्सी डाल दी गई। जल्लाद ने पूछा पहले कौन। अच्छा, अब ये जल्लाद कौन था? कहते हैं कि ये जल्लाद को लाहौर से बुलाया गया था, क्रिश्चियन था, लाहौर से इसको बुलाया गया था, लाहौर के शहर शदरा से इस जल्लाद का ताल्लुक था। तो जल्लाद ने जब इनसे पूछा कि सबसे पहले कौन, सुखदेव जो एक साइड पे खड़े थे उसने कहा था पहले मेरी बारी है। इस मौके पर डॉक्टर लेफ्टिनेंट कर्नल जे जे नेल्सन भी मौजूद थे और कर्नल एस एल सोंधी भी यहाँ पे मौजूद थे। इन तीनों को तख्तादार पे लटका दिया गया, जेलर ने अपने यानी इनके गर्दन की रस्सियों को खींच दिया गया, तख्तों को नीचे से हटा दिया गया, इनके जिस्म लटक गए, कुछ अरसे तक लटकते रहे और उसके बाद इन दो डॉक्टर्स ने उनकी मौत की तस्दीक कर दी। अब क्या था कि इनको दफनाना कैसे है, क्योंकि सिख धर्म में हिंदू धर्म के बीच में दफनाया नहीं जाता, जलाया जाता है और जलाने के बाद उसकी राख को बहा दिया जाता है। अब इन लोगों को डर था कि ये इनकलाबी हैं और जब उसने इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया तो अंदर बाहर नारे भी लगने शुरू हो गए थे। तो पहले ख्याल था कि शायद जेल के अंदर ही इनको जला दिया जाए, मगर फिर ख्याल आया कि अगर जेल के अंदर जलाया गया तो धुआं बाहर निकलेगा जिससे लोगों को पता चल जाएगा और ये ना हो कि बलवा हो जाए और बाकी लोग जेल के ऊपर हमला कर दें। फिर कहते हैं कि जेल की पिछली दीवार को तोड़ के सामने से तो लेके, क्योंकि लोग भी जो इनके परवाने थे वो लोग वहाँ जेल के बाहर मौजूद भी थे, तो पिछले दीवार को तोड़ा गया। तोड़ने के बाद इनकी डेड बॉडीज को रावी के किनारे तक लेके, आप देख लीजिए कहाँ सेंट्रल जेल है, रावी के किनारे लेके गए, मगर रावी में पानी कम था। वहाँ से फिर इनकी डेड बॉडीज को सतलज पे लेके गए, क्योंकि जलाने के बाद वहीं गंगा में बहा देना यानी सतलज में बहा देना मकसूद था। मगर कहते हैं कि वहाँ पर लोग ज़्यादा जमा हो गए और अल्टीमेटली वो जो गवर्नमेंट के ऑफिशल्स थे उनको, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की डेड बॉडीज को वहाँ छोड़ के निकलना पड़ा। रात भर फिर उन्होंने इंतज़ार किया जो उनके इनकलाबी साथी थे। एंड दिस इज़ व्हाट इट इज़। बताने का मेरा मकसद यह है कि जब मुझे और आपको एक कौम मिली है तो हमें उसको इकट्ठा रखने के लिए, कौम को मजबूत रखने के लिए हमको एक से एक आवाज़ को मिला के चलना है, ना ये कि हमने एक दूसरे को कमज़ोर करना है। बड़ा प्यारा एक कौमी नगमा यहाँ छोड़ती हूँ, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। अल्लाह करे कि पाकिस्तान कायम रहे, आबाद रहे, अल्लाह करे कनाडा कायम रहे, आबाद रहे। देखिए साहब, पॉलिटिशियंस की गेम तो यही कुछ होती है। अब आप देखिए अमेरिका द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, پریزیڈنٹ آف امریکہ کے آپ اختیارات کا اگر ذکر کرتے ہیں, آپ اس 4 سال کے دوران دیکھیے, نیور ہیپنڈ ان دا ہسٹری, ہاؤ مینی پیپل ور فائرڈ, کتنے لوگوں کو انہوں نے فائر کیا. اینڈ میں اونچی آواز میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتی ہوں کہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ ول بی دی پریزیڈنٹ آف امریکہ ایون نیکسٹ 4 years. یو کین رائٹ اٹ ڈاؤن سم ویئر. He will be the president of America in next 4 years. And last nail in the coffin, کہ کل ان کو خطرہ کیا تھا, سارا وقت رونا تو یہی رہا نا کہ اگر بیلٹ کے ذریعے ووٹ ہوگا تو ڈر ہے کہ جو بائیڈن جیت جائیں گے. انہوں نے کیا کیا ہے کہ پوسٹ کا جو انچارج ہے وہی تبدیل کر دیا اور وہاں پہ اس بندے کو اپوائنٹ کیا ہے who is his own person. نمبر ون. نمبر ٹو, انہوں نے امریکن پوسٹ کی تمام کی تمام جو مراد تھیں وہ واپس دیتے ہوئے ان کی فنڈنگ ختم کر دی ہے. اب جو بیلٹس وہاں پر موجود ہیں کھل ہی نہیں سکنے, لے کے جا رہے ہیں, دے آر پلاننگ ٹو ٹیک اٹ کورٹ, دے آر پلاننگ ٹو ٹیک اٹ ٹو دا کورٹ. ڈیموکریٹس ول ڈیفینیٹلی وڈ لائک ٹو ٹیک اٹ ٹو دا کورٹ, but nothing is going to happen. Majid Jamal kuch kehna cha rahe
hain, wo yahi hai ki wo jo hai jo courts mein le jayenge to wo jo attorney general jo states ka wahan ka system bhi dusra hai, wahan jo attorney general hote hain states ke wo depend karta hai ki kis party se unka taluq hai, aur jo governor hain states ke to un pe depend karta hai ki wo kis party se hain.
Main aapko ek baat kehti hu ki hame rondne wale hum khud hain, اپنے آپ کو اپنے پاؤں کے نیچے دینے کے لیے ہم خود بڑے ماہر ہیں. امریکہ کو بھی اس کے ریزلٹ ان کو ان کی مرضی کا مل جائے گا, مگر وہ کہتے ہیں نا جتنی بڑی چیز ہوتی ہے اس کو ٹوٹنے میں عرصہ دراز لگا کرتا ہوتا ہے. دیز آر ناٹ گڈ سائنس. مگر پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ ول بی دا پریزیڈنٹ آف امریکہ ان نیکسٹ 4 years, بٹ واٹ ہی ڈیڈ ان دیز 4 years از full use of power. The whole world is against Mohammed bin Sulaiman. There is only one person who support Mohammed bin Sulaiman, and believe you me, he is not with Mohammed bin Sulaiman. He is with Mohammed bin Sulaiman till he needs him or till he listens to him. The day Mohammed bin Sulaiman نے ایک دفعہ آنکھ دکھائی, ابھی پچھلے دن 2 سال پہلے انہوں نے اس کو تھریٹ دیا تھا, ہم چاہیں تو ایک دن کے بیچ میں یہ کنگڈم ختم ہو سکتی ہے. Do you remember that?
Does it? انہوں نے کہا تھا 10 days, give me 10 days, we'll just
exactly
finish it off.
پوری دنیا, مگر because the guy is listening to them, he is helping them to do whatever they want in that region. Don't cry, don't blame him. It's our own fault. ہم شیعہ ہیں, ہم سنی ہیں, ہم وہابی ہیں, ہمارے پاس تو اپنے مسائل سے ہی نکلنے کا وقت نہیں ہے, تو ہم ایک پلیٹ فارم پہ کہاں سے اکٹھے ہوں. حالانکہ اگر اس خطے کے اگینسٹ کوئی کھڑا ہوگا تو دیٹ ول بی عراق, دیٹ ول بی ایران, اینڈ دیٹ ول بی ترکی, اینڈ آف کورس سیریا کہہ تو رہا ہے مگر سیریا کے حالات اچھے نہیں. سیریا, شام اینڈ لیپو نے ہمیشہ گریٹ رول پلے کیا, اگر آپ ہسٹری کے اوراق کا تجزیہ کریں تو. اللہ مدد کرے اس دنیا کی, سماعت فرمائیے, اس دیش کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے.
چال کے कौन हर बला को टाल के बरसों के बाद फिर उड़े परचम हिलाल के हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के बरसों के बाद फिर उड़े परचम हिलाल के इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के देखो कहीं उजड़े न हमारा ये बगीचा देखो कहीं उजड़े न हमारा ये बगीचा इसको लहू से अपने शहीदों ने है सींचा इसको बचाना जान मुसीबत में डाल के इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के दुनिया की सियासत के अजब रंग है न्यारे चलना है मगर तुमको तो पूरा के सहारे दुनिया की सियासत के अजब रंग है न्यारे चलना है मगर तुमको तो पूरा के सहारे हर एक कदम उठाना जरा देखभाल के इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के तुम राह तो आराम के झूले में न झूलो कांटों पे है चलना मेरे हंसते हुए फूलो लेना अभी कश्मीर है ये बात न भूलो लेना अभी कश्मीर है ये बात न भूलो ये बात न भूलो कश्मीर पे लहराना है झंडा उछाल के इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के
हेलो एवरीवन माय नेम इज़ नासिर शाह अगर आपको मॉर्गेज की तलाश है तो हमें कॉल करें 6477419000 कभी भी किसी तरह की मॉर्गेज चाहिए फर्स्ट मॉर्गेज सेकंड मॉर्गेज या कमर्शियल मॉर्गेज कोई भी होटल मोटल गैस स्टेशन या कोई फ्रेंचाइज लेनी है या किसी प्लाजे में कोई यूनिट बाय करना है और अगर आपको सेकंड मॉर्गेज चाहिए बेशक आपका क्रेडिट खराब हो गया या बैंकरप्सी हो गई या प्रपोजल कर लिए तो घबराने की जरूरत नहीं है सेकेंड मॉर्गेज अप टू 1 मिलियन विद इन 24 आवर्स में चाहिए तो उसके लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं 6477419000 6477419000 बहुत शुक्रिया
खूबसूरत दांत बाएतमाद मुस्कुराहट और बाएतमाद गुफ्तगू आपकी और आपके खानदान की मुस्कुराहटों की जमीन फिलिंग्स क्राउन्स ब्रिजेस क्लीनिंग एक्सेप्टिंग न्यू पेशेंट्स फ्री कंसल्टेशन दांतों की संभाल के लिए डॉक्टर पद्मजा 310 शेपर्ड एवेन्यू ईस्ट 2997466 कहते हैं कि माया को खींचे माया कर कर लंबे हाथ। हैरिसन द मैजेस्टिक मॉर्गेजेस के साथ रेजिडेंशियल कमर्शियल मॉर्गेज रीफाइनेंसिंग आपने करनी है, किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है, सारे बैंकर्स और लेंडर्स के साथ डीप ताल्लुक आते हैं इनके, आपको फाइनेंसिंग का बंदोबस्त भी हो जाएगा और चार्जेस भी कोई नहीं देने पड़ेंगे। हैरिसन जी बड़ी कमाल की तिकड़म लड़ा सकते हैं, बस आप कॉल कर लीजिए और पैसे का अरेंज हो जाएगा। $228 से $1,000 महीना कैसे बचा सकते हैं, कॉल हैरिसन Now 6472281000 Harry Sond of Majestic Mortgages.
Valia Traffic Legal Services se janab RS Valia.
Careless driving,
speeding ya phir accident,
fail to remain stop at the scene,
red lights ya phir seat belts,
permit drive without insurance,
racing, student driving ya phir caught while using phone,
speeding,
RS Valia aapki ticket se nijat dilwayenge aur aapke points bhi save karenge. 9054542112
जी सर, इससे पहले कि आप आगे जाएं, अरफा जी, गुड न्यूज, टोरंटो रैप्टर्स बीट देयर फर्स्ट गेम टू नेट्स 134-110 टोरंटो एंड 110, सो वन गेम इज इन द बैग, इज बेस्ट ऑफ सेवन।
तो अब आप रोज मिठाई लेके आया करेंगे?
रोजाना तो नहीं ना, पूरा जीत तो ले ना, ऐसा क्या मिठाई की दुकान हो जाएगी इधर तो, और वैसे ही हमारे सारे वो हैं,
क्या हैं
जो क्या कहते हैं उसको, शुगर बीमार।
मैं तो बिल्कुल, मुझे तो कोई शुगर नहीं है।
डायबिटिक?
नो, आई एम नॉट डायबिटिक।
सारे
शाजी आप डायबिटिक हैं? नो, आमिर आप डायबिटिक हैं? नो,
सारे डायबिटिक।
हम में से तो एक भी, एक दो तीन चार बंदे और पांच में से एक भी डायबिटिक।
मैं चाहता हूं आप लोग हमेशा खुश खुर्रम रहे, इसी तरह सेहतमंद रहे।
दिस इज माजिद भाई,
सेहतमंद रहे।
दिस इज माजिद भाई।
लास्ट टाइम जब रैप्टर जीते थे, मैं पूरा मिठाई का डिब्बा लेके आया था। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट?
हमें क्या पर नहीं लेके आए थे? आपने तो हाँ, जब नहीं नहीं जब लास्ट टाइम रैप्टर्स जीते थे ना, तो माजिद भाई ने हम सबको एक एक घर लेके दिया था।
हाँ ना,
तो कहने में क्या,
अभी तक घर है आपके पास?
कहने में क्या,
बेचा तो नहीं ना आपने?
व्हाट अ मैन, स्टोरी मेकर, ही इज अ स्टोरी मैन, दैट्स व्हाट इट इज। सिटी साहब प्रोग्राम सुन रहे हैं आप, आरिफा मुजफ्फर का बहुत शुक्रिया। मेरे एक भाई ने मुझे चेक किया है, MBS, मेरा ख्याल है MBS, अगर मैं कहूँ MBS मोहम्मद बिन सलमान उनका नाम है, आपने मुझे करेक्ट किया, आई चेक इट, सलमान, मोहम्मद बिन सलमान, आई थैंक यू वेरी मच, मोहम्मद बिन सलमान MBS के नाम से वो पहचाने जाते हैं। और इस वक्त जो हमारे कवर बाजवा साहब जब गए हैं बेशक आर्मी चीफ से मिलने के लिए, वहाँ पे गए हैं, बट ऑफ कोर्स ही मेट विद MBS, बिकॉज सऊदी अरेबिया में चिड़िया पर भी नहीं मार सकती MBS की मर्ज़ी के बग़ैर। सुन रहे हैं प्रोग्राम साज़ो आवाज़, मैं आपके साथ आरिफा मुजफ्फर। एक दो पैगाम देना चाहती हूँ, एक तो फजल वदूद साहब के बारे में कि अगर आपको इंश्योरेंस चाहिए, लाइफ डिसेबिलिटी क्रिटिकल इलनेस, तो फजल वदूद इंश्योरेंस प्रो के साथ आपका ताल्लुक है, 25 साल तक अंडर राइटिंग करते रहे हैं, नाउ ही इज़ इन द फील्ड, देखते हैं कि कितना आसान होता है और कितना मुश्किल होता है। फजल वदूद से आप मुलाकात कीजिए, और यू मस्ट हैव लाइफ इंश्योरेंस डिसेबिलिटी क्रिटिकल, एंड डू नॉट बाय बिग नंबर्स, जस्ट समथिंग व्हाट यू नीड, व्हाट यू डेफिनेटली नीड। अल्लाह करे कभी हाथ खुला होगा तो ज़्यादा कर लीजिएगा। फजल वदूद का नंबर 6472864285 286-4285 286-4285 उनका नंबर है। बाय द वे, आप लोगों के नोटिस में आ गया होगा कि डोनाल्ड ट्रंप, अब देखिए हैशटैग के ऊपर ये न्यूज़ लगी हुई है, हैशटैग रॉन्ग ट्रंप, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप के जो भाई हैं, कल वो हॉस्पिटलाइज हुए थे, ही वो 71 ईयर्स की एज थी, डोनाल्ड ट्रंप के छोटे भाई थे रॉबर्ट ट्रंप, उनका डेथ हो गई। अगेन फूड स्टाइल लाइफ स्टाइल पर बड़ा डिपेंड करता है, देर आर सम पीपल जो स्ट्रेस लेते हैं, देर आर सम पीपल जो स्ट्रेस देते हैं, जो स्ट्रेस लेने वाले होते हैं वो डायबिटिक हो जाते हैं, जो स्ट्रेस देने वाले होते हैं वो ठीक ठाक रहते हैं। साहब रॉबर्ट ट्रंप की उम्र 71 ईयर्स थी, और मतलब उनको बहुत लोगों के साथ मजमे में रहना अच्छा नहीं लगता था, उनको बहुत शोहरत अच्छी नहीं लगती थी, خاندان کے کاروبار سے منسلک رہے اور وائٹ ہاؤس کے اعلیٰ حکام کے مطابق صدر ٹرمپ جمعے کو اپنے چھوٹے بھائی کی عیادت کے لیے نیو یارک سٹی اسپتال گئے تھے. ان کی وفات پر پیغام میں کہا گیا کہ میرے انتہائی عزیز بھائی رابرٹ کا آج انتقال ہو گیا. یہ وہ نہ صرف میرے بھائی تھے بلکہ میرے بہترین دوست بھی تھے. ان کی یادیں ان کے دل میں ہمیشہ زندہ رہیں گی. اور رابرٹ جو تھے, آپ کو یاد ہوگا ابھی ریسنٹلی ان کی ایک بھانجی ایک کتاب جو لکھ رہی تھی, اس کتاب کو روکنے میں بھی یہی جو ان کے بھائی رابرٹ ٹرمپ ہیں انہوں نے اس کو منع کیا تھا کہ جو خاندان کی باتیں ہیں وہ ہمارا ایک پیکٹ ہے کہ ہم ان کو پبلش نہیں کر سکتے. بہرحال اپنی جونی کی بات ہے کہ انہوں نے اپنی بھتیجی کی لکھی گئی کتاب کی اشاعت روکنے کے لیے عدالت سے رجوع بھی کیا تھا, البتہ عدالت نے ان کی درخواست کو رد کر دیا تھا. رابرٹ ٹرمپ اسی مہینے بیمار ہوئے تھے, اسپتال میں داخل ہونا پڑا, کئی دن انتہائی نگہداشت کی کیئر میں رہے ہیں. الٹیمیٹلی یسٹرڈے ہی ڈائیڈ. ہر بندہ جو اس دنیا میں آیا ہے اس کو ایک نہ ایک دن جانا ہی ہے. صاحب فیس بک کے اوپر الزام ہے, اب دیکھتے ہیں کہ اپنے الزام کو کس حد تک کلیئر کر سکتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ بی جے پی انڈیا کی جو بھارتیہ جنتا پارٹی ہے وہ اس سے نرمی برتتی ہے. آپ کو بتائیے, فیس فائنڈنگ ان کی ایک ہے اسٹریٹجی جس میں اگر آپ کوئی چیز پوسٹ کرتے ہیں تو فیس بک اس کو کریکٹ کرتا ہے. تو انڈیا کی حکمران جماعت بی جے پی اور اس کے کارکنان کی جانب سے نفرت کو فروغ دینے والے مواد پر نرمی اختیار کرنے کا الزام کے جواب میں فیس بک نے کہا ہے کہ اس بارے میں ان کی ایک عالمی پالیسی, اس کا تعلق کسی سیاسی جماعت یا نظریے سے نہیں ہے. وال اسٹریٹ جرنل نے, اب یہ رپورٹ کسی ایکس وائی زیڈ کی بھی نہیں ہے, وال اسٹریٹ جرنل نے دعویٰ کیا تھا کہ فیس بک انڈیا میں اپنے کاروباری مفادات کے پیش نظر بی جے پی کے رہنماؤں کے نفرت پھیلانے والے مواد پر سختی سے پیش نہیں آتا. حالانکہ امریکہ میں بھی وہ سختی سے پیش آتا ہے, مگر کیونکہ فیس بک کا کاروبار ہے انڈیا میں تو اپنے کاروبار کو بچانے کی خاطر وہ انڈیا سے جو نفرت کا مواد شائع ہوتا ہے اس کے اوپر اتنے اسٹرکٹ نہیں ہے. فیس بک نے کہا ہے کہ ہیٹ سپیچ یعنی نفرت کو فروغ دینے والی تقاریر کے خلاف ان کی آزاد پالیسی ہے. کسی خاص سیاسی جماعت یا خاص قسم کے نظریات کے ساتھ سختی یا نرمی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. فیس بک کی جنوبی اور وسطی ایشیا کی پبلک پالیسی ڈائریکٹر نے کہا دلی پولیس کی سائبر سیل یونٹ میں کی گئی لوگوں کے خلاف شکایت درج کروائی ہیں. وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اپنی ٹیم کو بی جے پی کے ایک رہنما کی ہیٹ سپیچ یا نفرت پر مبنی پوسٹ کے خلاف کارروائی کرنے سے انہوں نے اپنی ایک جو اب یہ جو ان کی فیس بک کی ایک امپلائی ہیں شی ٹریولڈ دیئر اور انہوں نے اپنی ایک کلیگ کو یا فیس بک کی ایک اور دوسری امپلائی کو وہ ہیٹ سپیچ کو بلاک کرنے سے روکا تھا. وال اسٹریٹ کی رپورٹ کے مطابق فیس بک کے ایک سینئر اہلکار نے کہا تھا کہ بی جے پی کے کارکنان کو گائیڈ لائنز کی خلاف ورزی کرنے پر سزا دینے سے انڈیا میں فیس بک کے کاروبار کو نقصان پہنچے گا. منی ٹاکس مین, منی ٹاکس. اس رپورٹ میں فیس بک کے مواد اور موجودہ اور سابق کارکنان کے بیانات کی بنیاد پر کہا گیا ہے کہ فیس بک بی جے پی کے ساتھ سہولت والا رویہ اختیار کرنا چاہتا ہے. بہرحال اب معاملہ انڈیا میں حکمران جماعت اور حزب اختلاف کی کانگریس کے درمیان تنازع کا سبب بھی بن گیا. چلیے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. انڈیا میں عام انتخاب سے پہلے 4 مارچ 2018 میں کانگریس اور بی جے پی نے ایک دوسرے پر کیمبرج انالٹیکا معاملے کی روشنی میں الزامات عائد کیے تھے. اور بہرحال اس وقت معاملہ یہی ہے کہ فیس بک انڈیا میں جو ہیٹ سپیچ کا مواد ہے اس کے اوپر اتنا اسٹرکٹ نہیں ہے. امریکہ کی حالت بہت مخدوش ہے. آپ کو یاد ہوگا پورٹلینڈ میں احتجاج ہوا ہے اور پولیس کے ساتھ بہت گراؤ جھلاؤ بھی ہوا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ حامی و ناصر رہے. ایک اور گیت کی طرف آپ کو لے کے چلتی ہوں. آپ اس کی
ٹاپ آف دی آور
لو, ٹائم ہی پورا ہو گیا.
ٹائم ہی ہو گیا جی,
ٹائم پورا, ٹائم پورا ہو گیا جی صاحب. بہت شکریہ. میری ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے اسپانسرس کو ضرور تعاون دیجیے گا. یہ اسپانسرس کے تعاون اور توسط سے ہم اس پروگرام کو آپ کی خدمت میں پیش کر سکتے ہیں. آف کورس غلطیاں بھی ضرور ہوئی ہوں گی. سمیرا داؤد بہت شکریہ. شازیہ آپ ہی ابھی آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں گی. وعلیکم السلام. صوفیہ اسلام وعلیکم السلام. چودھری مرتضیٰ خان پلیز ٹیل اس اباؤٹ مسٹر باجواز وزٹ پاکستان, ول کیپ ورکنگ آن دا سیم ویجز. Let me tell you, Pakistanis are working for the same wages. Pakistanis used to earn a lot. ہم خود اپنے آپ کو سستا بیچتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عربیہ میں ویجز کیوں کم ہوئی تھی؟ سعودی عربیہ میں ویجز کم ہونے کی وجہ یہ تھی کہ سعودی عربیہ اچھی قیمت کے اوپر لوگوں کو ہائر کرتا تھا, تو وہاں پر ایک بندہ پاکستانی جاتا تھا کہتا اوئے تم نے اتنے بندے, تم مجھے ایسے کرو 1000 ویزے دو, ان بندوں کو تم 2000 ریال دے رہے ہو, میں تمہیں 1400 میں پر ہیڈ لے کے آؤں گا. وہ 1000 ویزے لیتا تھا, پچھلے 1000 کے کینسل ہوتے تھے کیونکہ ہر بندہ تو باہر جانا چاہتا ہے, یہ 1400 ریال کے اوپر لے آتا تھا.